नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आजकल तो केवल आप जानते हैं, राहुल गांधी के योजनाओं की बात चल रही है, और जो राहुल गांधी को धो दिया है एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनकी बात चल रही है। और हमारे साथ जो है वो राहुल गांधी की जो इकोनॉमिक्स है, उनका जो अर्थशास्त्र है, उसके ऊपर बात करने के लिए ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका राजीव जी। मुझे एक छोटा सा सवाल बताएं, मुझे कई दिमाग में आया था मेरे कि ये वैसे तो 2024 में चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको राहुल गांधी को किसी कालखंड में प्लेस करना हो और आपको आइडिया ना हो कि आप किस कालक्रम में चल रहे हैं, तो आप उनको कहाँ प्लेस करेंगे?
उनके इस बयान को लेकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वे दुनिया में 100 वर्षों पहले जब कम्युनिज्म फैशन में था, जब यह आइडिया फैशन में था कि सरकारों को अमीरों की संपत्ति छीन कर गरीबों में बांट देनी चाहिए, समाज में समानता स्थापित करनी चाहिए, वे रूसी क्रांति के काल में चले। रूसी क्रांति, माओवादी
जी
क्रांति के काल में चले गए हैं। भारत में जो उनका सपना है माओवादी क्रांति का, वे उसी कालखंड में जी रहे हैं।
दर्शकों को वैसे मैं बता दूं कि बहुत से नए दर्शक जुड़े हैं। डॉक्टर राजीव मिश्रा कई दिनों से नहीं आए हैं यहाँ, तो डॉक्टर राजीव मिश्रा की प्रसिद्ध पुस्तक है विषैला वामपंथ। उन्होंने उसके बाद कोई पुस्तक लिखी नहीं। मैं तो बहुत कहता रहा हूँ कि आप अपनी डॉक्टरी छोड़िए, एनएचएस एनएचएस की कुछ किताबें किताबें लिखिए और लोगों को जागरूक कीजिए। तो आज हम जागरूक करने के लिए आपके सामने लाए हैं राजीव जी को। तो अब आप ये बताएं कि ये जो विभिन्न सरकारों ने जो प्रयोग किए हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के, मेरे विचार से जब हम पिछली बार आए थे या उससे पिछली बार आए थे, तब तो हमने चर्चा की थी कि जो कमाता नहीं है और उसको सबसे अधिक आनंद दूसरों की कमाई को तीसरे में डिस्ट्रीब्यूट करने में आता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं सरकारों ने कि भाई लोगों की सारी संपत्ति जो है वो स्टेट की हो गई और उसके बाद फिर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका क्या अनुभव है?
यह मैं पहले कहना चाहूंगा कि यह किस विचार से निकला है। तो कुछ लोगों का ख्याल है, द वेल्थ इज अ फिक्स पाई, द साइज ऑफ द पाई इज फिक्स्ड एंड वेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वे सोचते हैं समाज की, संसार की संपदा सीमित है और जो काम है सरकारों का, या कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि वह सुप्रीम पावर है और उसे दुनिया को रीऑर्गेनाइज करने का काम दिया गया, तो उसे बड़ी असमानता दिखाई देती है। कोई गमी गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास नहीं है। तो वे इसको असमानता के रूप में देखते हैं या इसको वे अन्याय के रूप में देखते हैं, इनजस्टिस के रूप में देखते हैं। और एक प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों में, एक सुपर या प्रवृत्ति होती है, क्विक्सोटिक प्रवृत्ति होती है, डॉन क्विक्सोट वाली प्रवृत्ति होती है कि अब हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। तो उन्हें ख्याल आता है कि हम सब ठीक कर देंगे, अब हम आ गए, अब हम सब ठीक कर देंगे। तो कैसे ठीक कर देंगे? तो यह जो बराबर बराबर नहीं बटा हुआ है, या जो असमान बटा हुआ है, या जो असमानता है, अन्याय है समाज में, इसको हम दूर कर देंगे और समाज की जितनी संपदा है उसको सब में बराबर बराबर बांट देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विचार कहां से आता है? मूलतः यह विचार एक फ्यूडल विचार है, एक सामंती विचार है। जब आपको लगता है, जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, एक सामंतवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता और उसे लगता है और वह उस स्थिति में होना चाहता है कि सबके जीवन का निर्णय वह ले, सबके बिहाफ पर निर्णय वह ले, तो ऐसा व्यक्ति इस मानसिकता का होता है कि भाई इतना है और इसको मुझे सब में बांट देना चाहिए बराबर बराबर, और खुद शेयर का हिस्सा रखना चाहिए, या कम से कम यह अधिकार रखना चाहिए कि किसको क्या मिलेगा यह मैं निर्धारित करूं। यह एक प्रवृत्ति होती है। और अर्थशास्त्र कहता है और कॉमन सेंस भी कहता है कि संपदा सीमित नहीं है, पूरी विश्व की संपदा सीमित नहीं है, संपदा का सृजन होता है और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वह संपदा के सृजन के बारे में है। तो जिसे अर्थशास्त्र की समझ होगी वह संपदा के सृजन के कंसेप्ट को स्वीकार करेगा। आप इसको ऐसे देखें, मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जब सभ्यता प्रारंभ हुई उसके पहले मनुष्य जंगल में रहता था, नंगा रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ पर रहता था, फल खाता था, हंटर गैदरर का जीवन जीता था और उसके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, वह किसी ने बनाया। कोई भी चीज संपदा नहीं होती, कोई भी चीज संपदा अपने आप में नहीं होती। आज के दिन में दुनिया में तेल है, यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बेसलाइन क्लियर करना चाहता हूं। दुनिया में आज तेल है, प्राकृतिक संपदा है, लेकिन जब गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो यह तेल जो है संपदा नहीं थी। आपको नहीं पता था इस तेल का क्या करना है, पेट्रोलियम का क्या करना है। आज के दिन में लिथियम बहुत बड़ी सभ्यता संपदा है, क्योंकि लिथियम बैटरियां बन रही हैं, लिथियम बैटरियों से चलने बनने वाली गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जब लिथियम बैटरियां नहीं बनती थी तो लिथियम संपदा नहीं थी। जब न्यूक्लियर ऊर्जा का की खोज नहीं हुई थी तो यूरेनियम संपदा नहीं थी। दुनिया में कोई भी चीज तभी संपदा है जब आपने उसका प्रयोग सीखा। इसलिए कपड़ा जो हम पहनते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, वह भी संपदा नहीं है तब तक जब तक कि हमने भोजन उगाना नहीं सीखा। तो हमें सभ्यता के विकास की इस घटना को समझना चाहिए कि कोई भी चीज जो हम देखते हैं, न भोजन, न कपड़ा, न मकान, जिन चीजों को लोग कहते हैं कि यह सबका राइट है, कोई भी चीज सबका राइट नहीं है, क्योंकि हर चीज को किसी ने बनाया है, भोजन को किसी ने उगाया है, वह मेरा राइट नहीं हो जाता। उसे जिसने उगाया है वह उसकी संपत्ति है और मुझे अगर उससे लेना है तो मुझे बदले में कुछ क्रिएट करना चाहिए और उसे देना चाहिए। यह सभ्य समाज की परिभाषा है। कुछ लोगों की जिसके दिमाग में यह आता है कि किसी ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, सब कुछ यहाँ पहले से था और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक से लेकर दूसरे को दू, यह जो विचार है, यह विचार एक तो अर्थशास्त्रीय मूर्खता से निकलता है, अर्थशास्त्रीय निरक्षरता से निकलता है, दूसरी इस मानसिकता से निकलता है, इस फ्यूडल, इस सामंती मानसिकता से निकलता है, दैट इट इज अप टू मी टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एल्स। इसका नतीजा क्या होता है? जो एक संपदा सृजन का प्रोसेस है कि समाज के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पैदा करते हैं और अब उसमें से अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त जो कुछ भी आपके पास होता है, जो कुछ भी हमारे पास होता है, उसे हम दूसरों को देते हैं और उनसे वे वस्तुएं लेते हैं जो कि उनके पास सरप्लस है। यह जो प्रोसेस है जिससे कि पूरी दुनिया में संपदा का सृजन होता है, समृद्धि आती है। सॉरी, जैसे ही आप इस प्रोसेस को डिसरप्ट करते हैं, संपदा का सृजन बंद हो जाता है और गरीबी आ जाती है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी समाजवाद प्रयोग किए गए हैं वहां गरीबी आई है, अकाल पड़ा है, गृह युद्ध हुए हैं, लोगों ने एक दूसरों को मारा है, सभ्यता नष्ट हुई। फिर भी यह प्रयोग बार बार किए जाते,
जैसे कि सोवियत यूनियन
बार-बार किए जाते हैं। जी हाँ, सोवियत यूनियन में यह प्रयोग किया गया। सोवियत यूनियन में करोड़ों लोग मरे।
जी, आपकी इमेज फ्रीज हो गई है।
चीन में
माओ, आपकी इमेज बार बार फ्रीज हो रही है और आवाज गायब हो रही है।
शायद मेरा इंटरनेट यहाँ कमजोर है, समाजवाद आ गया है इंग्लैंड में।
आप क्या, समाजवाद आ गया है लगता है पूरी तरह से।
जी हाँ,
अभी तो आ रही है, चलिए कंटिन्यू करें।
आप देखें इंटरनेट की आपने बात की, इंग्लैंड में समाजवाद आ गया है, भारत में पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में इंटरनेट की गति जितनी है मुझे इंग्लैंड में वो गति नहीं मिलती, क्योंकि हमने भारत में समाजवाद को पिछले 10-12 वर्षों में जगह नहीं दी है।
बाहर कर
दस
दिया।
वर्षों में सर छुपाने की जगह नहीं दी है भारत में। तो जब जहां कहीं भी समाजवाद होता है तो पहाम होता है, सृजन की प्रक्रिया नष्ट हो जाती है, वहां गरीबी आ जाती है। तो उसके बाद फिर सर्वाइवल के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, गुलाम बनाते हैं। जो लोग विरोध करते हैं, जिनमें असंतोष फैलता है या जिन्हें समझ में आता है कि यह गलत हो रहा है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उन्हें लेबर कैंप में डाला जाता है। तो हम राहुल गांधी भारत को क्या उसी रास्ते ले जाने की ओर आए हैं? हम रूस का उदाहरण लें, चीन का उदाहरण लें, उससे भी बढ़िया वेनेजुएला का उदाहरण लें। सबसे ताजा है
ताजा
वेनेजुएला का उदाहरण, और सबसे स्टार्क कंट्रास्ट में है कि वेनेजुएला 1990 तक, 2000 के आसपास तक लैटिन अमेरिका का, अमेरिका के बाद, यूएस के बाद सबसे धनी देश था। वहां पर पेट्रोलियम निकला, पेट्रोलियम की अपार संपदा निकली, लोग बहुत धनी थे, और वेनेजुएला एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री था। और तब वहां पर एक समाजवादी सरकार आई जिसने निर्णय लिया कि सरकार का काम है स्वदेश की संपदा को सब में बराबर बराबर बांटना। तो सरकार ने क्या किया कि पेट्रोलियम से जो आय हुई उसे लोगों में बांटना शुरू किया। उसका नतीजा क्या हुआ, मतलब बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्कूल से सिर्फ किताबें नहीं मिलती थी, मुफ्त शिक्षा सिर्फ नहीं थी, मुफ्त शिक्षा थी, किताबें मिलती थी, यूनिफॉर्म मिलता था, पॉकेट मनी मिलती थी, सर पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों को स्कूल से। और इसका नतीजा क्या हुआ कि वहां पर सारे दूसरे उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों ने काम धाम करना बंद कर दिया, प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, और सिर्फ ऑयल के प्रोडक्शन पर पूरा देश चल रहा था और मस्ती कर रहा था। ये 1996-97 से लेकर 2010 तक के बीच में खूब मस्ती की सरकार ने। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस कम होने लगे। पेट्रोल प्राइसेस जब कम होने लगे तो उनकी आय घटने लगी और पूरे देश को मुफ्त में खाने की आदत लगी थी। तो जैसा कि उनकी अर्थशास्त्र की बुद्धि नहीं काम करती है, उन्होंने हिसाब लगाया बहुत आसान है, लोगों को पैसे देना है, नोट छाप छाप कर बांटते रहे, नोट छाप छाप कर बांटते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ कि थोड़े दिनों तक तो सबको संभाल कर उन्होंने नोट बांटा, लेकिन इतने नोट छाप दिए कि वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवार की कीमत टॉयलेट पेपर से कम हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे वेनेजुएला की इकोनॉमी नष्ट हो गई। वेनेजुएला उस रीजन का सबसे गरीब देश बन गया, वहां से 25% जनसंख्या दूसरे देशों में भाग गई, वहां लोगों की औसत आयु 10 से 15 वर्ष कम हो गई, एक औसत वेनेजुएलन का वजन, या हेल्थ कारण से मतलब डाइटिंग करके नहीं, भोजन की कमी से 10 से 20% कम हो गया, भोजन मिलना बंद हो गया। वेनेजुएला की लड़कियां दूसरे देशों में जाकर वेश्यावृत्ति करने लगी, और यह सब कुछ जो हुआ 15 वर्षों के अंदर हुआ, 15 से 20 वर्षों के अंदर वेनेजुएला, जो कि इस रीजन का सबसे धनी देश था, एकाएक बर्बाद हो गया। उससे भी मजे की बात सुनिए, आज वेनेजुएला में चुनाव होते हैं और आज भी चुनकर वही पार्टी की सरकार आती है जिस पार्टी की सरकार ने यह सब दिया वेनेजुएला को। तो यह जो स्थितियां बनती हैं यह इरिवर्सिबल होती हैं, एक बार आप इसमें पैर रखते हैं तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं कि जो भी रोजी रोटी के थोड़े बहुत भी साधन है वे सरकार के हाथ में हैं, वो रह जाते हैं, और आप उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। उसका नतीजा यह होता है कि सारा राजनीतिक तंत्र जो है, एक पार्टी, एक व्यक्ति, कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाता है। यह वेनेजुएला का एक्सपीरियंस है और यह लूटो बांटो और पूरे देश के साधन को सब में बांट दो का यह जो प्रॉमिस है यह हमेशा देश का वेनेजुएला बनाता है। इस बात को बेस लाइन समझकर, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है दुनिया में, इसका कोई एक्सेप्शन आज तक कभी भी नहीं हुआ है, कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। देश की संपत्ति को हम सब में बांट देंगे, इस प्रॉमिस का एक ही अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाएगी, उनके किए हुए प्रोडक्शन को छीन लिया जाएगा, और जब आपको पता है कि आपके किए हुए प्रोडक्शन को छीन लिया जाएगा तो आप कोई भी काम करेंगे क्यों?
वैसे जो जिस प्रकार के वायदे कर रहे हैं राहुल गांधी, अब वो कह रहे हैं कि साहब ये देखिए जो आजकल जो बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो हम जो है इनके खातों में साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए जो है वो हम डालते रहेंगे खटाखट, ठका ठक ठका ठक। देखिए कितना अच्छा सोल्यूशन है बेरोजगारी का।
जी, यह विचार यहां से निकलता है, वेल्थ क्या है इसकी समझ नहीं है। राहुल गांधी तो खैर राहुल गांधी हैं, पर उनके लिए जो लोग लिखते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, मुझे लगता है इतने पैसे हैं पार्टी के पास कि ढंग के एक आदमी से मैनिफेस्टो लिखवा लो यार, कम से कम चुनाव तो तुम्हें यूं भी नहीं जीतना।
उनके पास तो जॉर्ज सोरोस भी है, वैसे वो जो उनके रेजिडेंट इकोनॉमिस्ट है वो शौत रेश है, जो कि घोर लेफ्टिस्ट है और हर समय यही प्रयास करते रहते हैं कि कैसे फ्रीबीज और बढ़ाए जाए, फ्री में लोगों को क्या क्या दे दिया जाए।
मजे की बात है कि आपके पास दुनिया के सारे साधन हैं, उससे भी बड़ी बात क्या है, आपके पास राहुल गांधी के पास जो एक चीज है वो किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी के पास की सबसे बड़ी ताकत है he has nothing to lose. राहुल गांधी के पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो नंगे से भगवान डरता है, या जो कहते हैं कि नंगे से भगवान डरता है, राहुल गांधी इसको चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। वे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ भी बेसिफ्रार की बात बोल सकते हैं, सिर्फ उसके न्यूसेंस वैल्यू के लिए। राहुल गांधी ने यह इसलिए नहीं किया है कि वे चुनाव जीतेंगे और वे पूरे देश में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देंगे, जी नहीं, राहुल गांधी को सपना भी नहीं आता होगा कि वह चुनाव जीतेंगे और अपने मैनिफेस्टो को उनको लागू करना पड़ेगा, इसलिए वे इतनी
इरेस्पॉन्सिबल। आप राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपको बात बताता हूं मैं, इनके एक सलाहकार है प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने जो आंकड़े दिए उसके बेसिस पे राहुल गांधी कन्विंस हो गए कि उनकी 183 सीटें आ रही हैं, 2019 की बात कर रहा हूं, और जब उनकी 2019 में 183 सीटें नहीं आई, 52 सीटें आके रह गई, तो उन्होंने इलेक्शन को फ्रॉड करार कर दिया और ईवीएम के पीछे पड़ गए, और उसके 2-4 महीने के बाद से उन्होंने अडानी को टारगेट बना लिया। अब वो एक चीज और भूल जाते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि उनके स्टेटेड गोल है, स्टेटेड गोल बताता हूं उनका आपको, उनका स्टेटेड गोल है कि जितनी आबादी उतना हक। जब आबादी का क्या क्राइटेरिया है, वो है कास्ट, और वो कहते हैं कि भाई जो कुछ हो सकता है वो कास्ट ही से हो सकता है, और हम कास्ट के हिसाब से सबको सब कुछ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे और सब रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात वो और भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना क्रांतिकारी कदम किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारे देश के जो है बजट वो लगभग 42 या 43 ट्रिलियन रुपीस है, इसको आजकल जो चल गई है परंपरा उसके अनुसार 43 लाख करोड़ बोलते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जितनी भी महिलाएं हैं, पहले उन्होंने सबसे कहा जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको वो 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो लोगों ने बताया साहब 68 करोड़ महिलाएं हैं, तो आप 68 लाख करोड़ यानी 68 ट्रिलियन रुपीस इन्हीं में दे देंगे, तो बजट तो जो इस समय चल रहा है वो 42-43 ट्रिलियन पे ही चल रहा है, और उसमें से कोई 11-12 ट्रिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, तो ये कैसे लाएंगे आप? तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम गरीब महिलाओं को दे देंगे, क्राइटेरिया नहीं बताया हम गरीब महिलाओं को कैसे दे देंगे क्या दे देंगे। तो ये राजीव गांधी का जिसको हम कह सकते हैं पॉलिसी थिंकिंग लेवल है,
राहुल
गांधी का, सॉरी सॉरी राजीव गांधी का कोई बहुत बेटर नहीं था।
नहीं, राजीव गांधी से मुझे समस्या नहीं है, मैं आप राहुल को राजीव से रिप्लेस कर रहे हैं, मैं इस पे विरोध कर रहा हूँ।
नहीं ठीक है, आपका विरोध मैंने स्वीकार किया,
मेरा विरोध बिल्कुल व्यक्तिगत है।
जी
जी, तो मैं कहा था यह जो कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लागू नहीं करना है, या क्यों प्रॉमिस कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ इसके न्यूसेंस वैल्यू से मतलब। अगर उनके इस वैल्यू, उनके इस प्रॉमिस से देश में अव्यवस्था खड़ी होती है, अगर उनके इस प्रॉमिस से देश में असंतोष खड़ा होता है, अगर अपने इस तरह के बेतुके प्रॉमिस से वे देश में कुछ लोगों को, वामपंथी सबको या मेजोरिटी को कन्विंस करने के फेर में नहीं पड़ते। आप देखेंगे कि कोई भी वामपंथी आंदोलन होता है या क्रांति होती है, वह मेजोरिटी को साथ लेकर नहीं होती, वह एक वायलेंट माइनॉरिटी को साथ में लेकर होती है। तो उन्हें सबको नहीं कन्विंस करना, सिर्फ अगर कुछ लोगों को वे कन्विंस कर देंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, अडानी के पास जो पैसा है उस पर तुम्हारा हक बनता है, या किसी दूसरे के पास जो पैसा है उस पर तुम्हारा हक बनता है, या तुम्हारा पड़ोसी अगर मर्सिडीज से चल रहा है, या तुम्हारा पड़ोसी अगर हुंडई से भी चल रहा है, उसकी गाड़ी पर तुम्हारा हक बनता है, तुम उससे लड़ो, या अव्यवस्था खड़ी करने में अगर वे सफल हो जाएंगे तो वे सफल हो जाएंगे। हम और आप गलती करते हैं कि राहुल गांधी की सफलता और असफलता को चुनाव में सफलता और असफलता से जोड़ते हैं, पर चुनाव में सफल होने के लिए व्यक्ति को पूरे देश की मेजोरिटी को कन्विंस करना होता है, लेकिन एक अराजक व्यक्ति को अराजकता फैलाने के लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए। उनके पास एक छोटी सी माइनॉरिटी जिसको लगते, जिसको समझा दिया जाए कि बेटा मेरे पीछे आओ, हंगामा मचाओ, अव्यवस्था खड़ी करो और इससे तुम्हें लाभ होगा, अगर यह समझा दिया जाए तो राहुल गांधी सफल हो जाते हैं। राहुल गांधी ने बेसिकली अब सत्ता में आने की उम्मीदें छोड़कर अरविंद केजरीवाल का जामा पहन लिया है, जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी हुआ करती थी कि अधिक से अधिक अराजकता फैलाओ और व्यवस्था फैलाओ, उसके लिए यह प्रॉमिस जो है एक सफल प्रॉमिस हो सकता है। इसलिए हमें यह सोचना है कि राहुल गांधी ने ऐसा प्रॉमिस कैसे कर दिया, इसको वे कैसे करेंगे, उनके पास सत्ता आनी नहीं है और उन्हें इसे सचमुच में इंप्लीमेंट नहीं करना है, उन्हें सिर्फ इसे हथियार बनाकर समाज में अव्यवस्था फैलानी है, लोगों को भड़काना है, असंतोष फैलाना है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, अपना कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव चलाना है, विक्टिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यह प्रॉमिस पर्याप्त है।
ओके, तो अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ये जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव चल रहा है और साथ में जो पश्चिमी देशों में जो नैरेटिव चल रहा है मोदी के प्रति, मोदी फासिस्ट है, मोदी डिक्टेटर है, मोदी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि अब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गई है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके साथ में जो राहुल गांधी की प्रॉमिसेस हैं, ये आपस में आप इनमें तारतम्य देख रहे हैं क्या?
वेस्ट को भारत की प्रगति से ईर्ष्या है, सीधी सी बात है। वेस्ट के लिए हम निवाला थे, थाली में परोस कर रखा हुआ दुनिया का 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, जो उनका गुलाम बनने को तैयार था, जो उनके लिए सस्ता लेबर बनने को तैयार था, जैसे कि मैं हूं, और तो जो उनके लिए सस्ता जो लेबर बनने को तैयार था, जो उनके लिए गुलाम बनने को तैयार था, जो उनके लिए कंज्यूमर बनने को तैयार था, वो आज के दिन में प्रोड्यूसर बन रहा है, वो आज के दिन में आत्मनिर्भर हो रहा है, वो आज के दिन में इनकी नहीं सुनता। रूस के मुद्दे पर भारत जो है अपनी टांग अड़ा दी तोड़ा दी कि हम तो यही करना, ये हमारे इंटरेस्ट में, हम यही करेंगे। यह होता था क्या? आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे होते तो रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत का रुख क्या होता और उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ता। तो भारत की यह स्थिति आज के दिन में मिस्टर जयशंकर जिस तरह का बयान देते हैं कि योर प्रॉब्लम इज नॉट माय प्रॉब्लम, व्हाई व्हाई डज वेस्ट थिंक दैट योर प्रॉब्लम इज एवरीवन्स प्रॉब्लम बट अदर्स प्रॉब्लम्स आर नॉट योर प्रॉब्लम, ऐसा बयान कभी भारत का कोई विदेश मंत्री कभी देता, या अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो इनकी हिम्मत होती कि इस तरह का स्टैंड लेते? तो भारत की यह प्रगति, भारत का यह स्टैंड लेना, भारत की यह अस्मिता, एग्जिस्टेंस वेस्ट की आंखों में नहीं उतर रही है। वे भारत की सत्ता बदल नहीं पा रहे। सत्ता बदलने के लिए हम सबने सुना था, जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हम 100 मिलियन डॉलर दें। आज के दिन में भारत के लिए चिल्लर है 100 मिलियन डॉलर। 100 मिलियन डॉलर से भारत की सत्ता पलट पाने में जोर शोरों सफल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को खरीद सकते हैं। भारत में बहुत ज्यादा अभी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कास्ट नैरेटिव चल रहा है, सोशल मीडिया पर पेड प्रचार चल रहा है, कास्ट लाइन पर हर कोई देख रहा है, जो कोई भी सोशल मीडिया पर है वह देख रहा है कि एकाएक पेड कास्ट लाइन पर चलने वाले पेड आईडीज की, पेड पेजेस की बाढ़ आ गई है। तो इन सब के लिए पैसा आ रहा है और इसका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, वो पड़ रहा है, या कुछ नहीं पड़े, चुनावों में ना पड़े तो समाज पर पड़ेगा, समाज के अंदर जहर बोया जा सके, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन सत्ता पलट पाने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें क्या करना है? वे कम से कम हमारे राह में अधिक से अधिक रोड़े डालने का प्रयास कर। तो राहुल गांधी, बाकी छोटे छोटे रोड़े हैं, राहुल गांधी एक थोड़ा बड़ा रोड़ा है, राहुल गांधी पत्थर है, वह उससे हमारे रास्ते बंद नहीं हो रहे, हमारी विकास की धारा नहीं रुकने वाली, हम जिस रास्ते चल रहे हैं वह चलेंगे, लेकिन राहुल गांधी उस रास्ते में रोड ब्लॉक करा खड़ा करने में सफल हो रहे हैं। तो सिंपली जो वेस्ट को भारत की प्रगति नहीं पच रही है और उसकी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है जो राहुल गांधी के माध्यम से और राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स के माध्यम से हो रही
जी
है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि क्या हुआ होता अगर भारत को रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अपना स्टैंड रखने की स्वतंत्रता नहीं होती, या तो हम इतने सक्षम नहीं हुए होते या हमारा नेतृत्व जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहा होता, तो हमारे साथ क्या हुआ जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है? आप देखें इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है कि कहां लड़ रहा है रूस और यूक्रेन और महंगाई बढ़ रही है इंग्लैंड में, यहाँ पेट्रोल की कीमतें 1.5 गुनी हो गई, कोविड के टाइम से आज के टाइम तक यहाँ पेट्रोल की कीमतें सीधा 1.5 गुनी हो गई। कोविड के टाइम में जो पेट्रोल की प्राइस जो थी 90 पेंस थी, वो सीधा बढ़ के 1 पाउंड 60 पेंस, 1 पाउंड 70 पेंस, एक समय में 1 पाउंड 90 पेंस तक गई है, लगभग 2 पाउंड छूने की स्थिति में थी। तो अभी फिर से थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल किया है, नहीं तो यहाँ मुद्रा स्फीति की दर 11% थी। लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है? मैं कहता हूँ देश के बारे में बहुत कुछ बोलना कि भारत राष्ट्र प्रगति करेगा, राष्ट्र समर्थ बनेगा, इस बातें चाहे आपको हो सकता है कि प्रभावित करें, हो सकता है ना प्रभावित करें, लेकिन आपका अपना जीवन कैसे प्रभावित होगा आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमारा देश इस स्थिति में नहीं होता कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रेशर को हैंडल कर सकता, तो हमारे साथ भी वही हुआ होता या उससे बुरा हुआ होता? कम से कम उतना बुरा तो जरूर हुआ होता जितना इंग्लिश इकोनॉमी के साथ। इंग्लैंड की इकोनॉमी आज से 10 साल पहले भारत से अधिक सुदृढ़ थी। इंग्लैंड को मैं एक रिच कंट्री जानकर यहाँ आया था, यह बात तो सही है कि मैं जब आया था तो मैं सोच कर आया था कि मैं एक डेवलप्ड कंट्री में जा रहा हूँ, और पिछले 10 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में कोविड हुआ आया, कोविड के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, इन दोनों चीजों का इंग्लैंड की इकोनॉमी पर यह असर पड़ा है कि मेरे घर का जो इंस्टॉलमेंट मैं 1700 पाउंड देता था वो बढ़ के 3200 पाउंड हो गया है सर, लगभग डबल हो गया है।
फिर आप बचाते क्या है और खाते क्या है?
हाँ मैं बता रहा हूं यह स्थिति है मेरी, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चे की, सबकी सैलरी मिला के घर चल रहा है।
अच्छा,
तो
ये तो
मैं
बड़ी
बता
विचित्र
रहा हूं
बात
कि
है।
आपके
और
जीवन पर क्या असर पड़ा होता, प्रति व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ा होता। अब आप सोचें कि अगर आपका आपके देश में एक ऐसी सरकार होती जिसके होने से आपके घर का जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो डबल हो जाता, तो आपकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा होता, आप पर क्या असर पड़ा होता। बाकी बातें आप छोड़ दें, देश की दूसरी चीजों को आप छोड़ दें, तो हम किन चीजों से प्रोटेक्टेड हैं, हम कितने सारे दुनिया में होने वाली कितनी चीजों से पिछली सरकारों ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है, यह बात उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रही। दुनिया में इतनी अव्यवस्था फैला रहे हैं ये लोग, इतनी अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी यहाँ युद्ध करवाते हैं, कभी वहां युद्ध करवाते हैं, और जब जब अमेरिका में डेमोक्रेट सरकारें आती हैं तो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हो जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाता है, सिंपली इसलिए कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था खराब की जा सके अपने कॉस्ट पर भी। अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है पर उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था, वो अपना वो डॉलर छाप लेते हैं और अपनी रंगदारी से वे डॉलर की कीमत मेंटेन किए हुए, वह एक अलग ही कहानी है।
वो तो
अमेरिका में
अलग ही
यही चल
कहानी है,
रहा है
कितने
जो
दिनों
भारत
तक
में लाने का
चलेगी।
प्रयास
अब
किया
उसके
जा रहा
ऊपर भी संशय उत्पन्न हो गया कि कितने दिनों तक ये
है,
चल
भगवान
पाए।
जाने। हाँ, जितने दिन उनकी रंगदारी चलेगी
लेकिन
उतने दिन
लेकिन
चलेगी,
उनके जो
लेकिन
सहारे
अमेरिका में
हैं,
आज के दिन में जितने डॉलर हैं, जी हाँ,
हाँ, बोले बोले।
अमेरिका में आज के दिन में जितने डॉलर हैं उसके 2/3 से अधिक पिछले 3 वर्षों में प्रिंट किए गए हैं बाइडेन के सत्ता में आने के बाद, तो वे अपने इकोनॉमी सिर्फ डॉलर प्रिंट करके और डॉलर का गुंडागर्दी से विश्व बाजार में डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करके अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी डुबाने में लगे। तो इंग्लैंड की सत्ता पलटने वाली है, इंग्लैंड में लेबर को बढ़त मिली हुई है कंजर्वेटिव के ऊपर, काफी गहरी बढ़त मिली हुई है, हालांकि ऋषि ने इस कितने कठिन समय में देश को बहुत अच्छे से चलाया है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल पाने में यहाँ ऋषि सुनक की सरकार मोस्ट लाइकली असफल रहने वाली है। ऐसा ही प्रयास, उन्हें उम्मीद था कि दुनिया में जितना अधिक अव्यवस्था क्रिएट करेंगे हर देश में यही परिणाम आएगा, भारत में नहीं आया। तो यह जो इससे हम बचे हुए हैं, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति और उसकी नीतियों का ऋणी होना चाहिए। मैं सीधी सी बात कहता हूं, हमें पूरे देश को ऋणी होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने हमें दुनिया की इतनी ऐसी सारी फोर्सेस से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और राहुल गांधी उन्हीं फोर्सेस के हाथ का की कठपुतली हैं, उन्हीं का प्यादा हैं, उनका हथियार है हमारे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ लिया आपने। जो सही नब्ज है वहाँ आपने प्रहार किया है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न डॉक्टर राजीव मिश्रा से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है वो पूरे विश्व के एक ईर्ष्या का पात्र है भारत। 8.4% से ग्रोथ हो रही है, 5% से कम यहाँ की मुद्रा स्फीति है इतनी हाई ग्रोथ होने के उपरांत भी, और जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रही है, और जहाँ तक समस्त वस्तुओं की आपूर्ति का प्रश्न है, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से अप्रूवल रेटिंग्स भी उसी प्रकार से, जब प्यू जैसी संस्था जब अप्रूवल रेटिंग लेती है, जो कि वेस्ट का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो भी लगातार आप देख रहे हैं कि मेरे विचार से पिछले 7-8 वर्ष से तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे चल रहे हैं, 70+ पे चल रहे हैं। कोविड में भी बहुत नीचे गए थे तो 55 तक गए थे, आसपास कोई नहीं है पूरे विश्व में। तो समस्या तो है, और फिर इस समस्या को तो अराजकता से ही दूर किया जा सकता है।
मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम जब भी कहते हैं विकास दर इतनी है, जीडीपी बढ़ रही है, मुद्रास्फीति कम है, हमें इन सारी बातों को ट्रांसलेट करना चाहिए रियल लाइफ में, इच इंडिविजुअल की लाइफ में। क्योंकि एक व्यक्ति जो है मुद्रास्फीति नहीं देखता और विकास दर नहीं देखता, एक व्यक्ति देखता है उसके जीवन पर क्या असर पड़ा। और हमें यह देखना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहां से गया था 2010 में, भारत से आ गया था इंग्लैंड, तो मेरा एक फ्लैट था जो पड़ा हुआ था। मैंने वह फ्लैट किसी को, हमारा मेरा फ्लैट था, उसमें हम लोग कभी जाकर रहते थे, कभी पेरेंट्स रहते थे, कभी कोई लोग रहते थे। लेकिन अब मेरे पिता नहीं रहे तो मोस्टली खाली पड़ा हुआ था, तो इस बार मैंने उसे खाली कर दिया, किराए का था, मैंने खाली कर दिया। उसमें जो सामान पड़ा हुआ था, जब हमने लोगों को देने का प्रयास किया तो एक समस्या आई। कोई, जो मेरा फ्रिज था, जो मेरा टेलीविजन था 2010 में मैंने जिसे खरीदा था, उसे 2024 में कोई मुफ्त में ले जाने को तैयार नहीं है। मेरी मेड मुफ्त में ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास मुझसे अच्छा फ्रिज है। तो जो मेरा लाइफस्टाइल था या जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था आज से 15 वर्ष पहले, आज के दिन में मेरी मेड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे बेहतर है। स्कूटी से आती है, बच्चे उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक जनरेशन बाद वह मेड का काम नहीं कर रही होगी, उसका अगला जनरेशन जो है किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव बना होगा। तो यह जो आप देख रहे हैं, इसको आप एक व्यक्ति के लाइफ के में आने वाले परिवर्तन पर देखिए। 2010 में जब मैं आया था, मेरे पास मारुति 800 कार थी जो मैं छोड़कर आया था। आज तो मारुति 800 बननी बंद हो गई है, हमारी पूरी कॉलोनी में एक भी घर नहीं है जहां एसयूवी नहीं खड़ी है, एक या दो। उस वक्त मारुति 800 क्या जेन स्टैंडर्ड हुआ करता था, एवरेज हुआ करता था, पार कम से कम। वैगन आर चलाकर चीफ मिनिस्टर बन गए थे दिल्ली के, 2014 की बात है, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वैगन आर चला के, 13 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वैगन आर चलाते थे। तो आप लोगों के जीवन स्तर में आया हुआ परिवर्तन देखिए, और इसकी दिशा देखिए, इसकी गति देखिए, और इसके अनुसार आप निर्णय लीजिए कि हमारे जीवन में कितना अंतर आया है। और यह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिया जाएगा जिससे हम यह प्रगति कर रहे हैं। और वह प्रोसेस क्या है? वह प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएट हुआ है, वेल्थ क्रिएट होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होने की चीज नहीं है। वेल्थ क्रिएट होता है तभी बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट कर करके आप किसको कितना दे लोगे, अंबानी के पूरे घर
लेकिन
को
जब
पूरे
पैसा
देश में
अपना नहीं
बांट
होता है
दोगे तो
तो आप
किसकी।
जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर
हाँ
लो।
नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कंसेप्ट है वह इतना रिटार्डेड कंसेप्ट है, इतना रिटार्डेड कंसेप्ट है, और इतने पढ़े लिखे लोग इस कंसेप्ट को सब्सक्राइब करते हैं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे यह सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ हम इस धरती पर सरवाइव कैसे करेंगे, मुझे इस बात की फ्रस्ट्रेशन होती है। आप अंबानी के पूरे वेल्थ को उससे छीन लो और सब में बांट दो, किसी को क्या मिल जाएगा, कितने लोगों को कितने दिन तक क्या मिल जाएगा। लेकिन एक बात और है, आप सोचते हैं कि अंबानी के पास जो वेल्थ है, इन्होंने कहा कि वेल्थ का सर्वे करेंगे और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी के पास वेल्थ जमा होता है क्या? आपके पास वेल्थ होती है? जी नहीं, आपके पास वेल्थ की रिसिप्ट होती है। आपके पास एक्चुअली जो बैंक में पैसा है वो अपने आप में क्या है, लोगों को वेल्थ क्या है इसकी कंसेप्ट नहीं है। आपके बैंक में जो पैसा है वो क्या है, आप उसको खा सकते हैं, आप उसको पहन सकते हैं, आप उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप उसका क्या कर सकते हैं? पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है, पैसा जो है वह इस बात का रिसिप्ट है कि आपने कितना वेल्थ जेनरेट करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, और आपने जो पार्टिसिपेट किया वेल्थ और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जनरेट करने के प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया, आपके पार्टिसिपेशन की वैल्यू का रिसिप्ट है जिसको कि आप जमा रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी और को देते हैं और उससे उसकी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो रियल वेल्थ जिसका व्यक्ति प्रयोग करता है, जिसका व्यक्ति के जीवन स्तर पे कोई फर्क पड़ता है, कोई अंतर आता है, वह है गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ना कि अब उतने ही रहे गुड्स एंड सर्विसेज और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वह तो खत्म हो जानी है, क्योंकि आपके पास आप खाना खा रहे हो, आज खाओगे कल खाओगे परसों खाओगे, किचन का सामान खत्म हो जाएगा, फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको सचमुच का अनाज चाहिए या आप रुपया खा सकते हो? आप रुपया नहीं खा सकते हो, आपको सचमुच का अनाज चाहिए। आप रुपया नहीं पहन सकते हो, आपको सचमुच के कपड़े चाहिए। जब कपड़े बुने जाए और सिले जाए तभी आप पहन सकते हो। तो वेल्थ का जब तक क्रिएशन नहीं होगा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। आपका जो पैसा है सिर्फ उस वेल्थ क्रिएशन में आपके पार्टिसिपेशन की रसीद है। इस बात को वामपंथी नहीं समझते, इन्हें लगता है अरे दे देंगे नोट छाप के सबको बांट देंगे सभी हम धनी हो जाएंगे। उन्हें लगता है यह नोट जो है ना, यह जो पैसा है, जो करेंसी नोट है, यही धन है। यह धन नहीं है, यह धन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल धन वह है जो गुड्स एंड सर्विसेस हम प्रोड्यूस करते हैं। यह इस बात को नहीं समझने की के कारण, इस बात की अज्ञानता, मूर्खता, अनभिज्ञता, निरक्षरता के कारण इस तरह के विचार निकल कर आते हैं कि आप वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जी, तो हमने राहुल गांधी के विचारों के बारे में जो वैश्विक इसका जो एक प्रकार से विश्लेषण किया है, आइए अब हम थोड़े दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों के प्रश्न आए हुए हैं, दर्शकों के प्रश्न को लेते हैं, देखते हैं वो